हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की। तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? तो पीटर लिंच ने अपनी बुक में वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के अंदर एंड अपने मल्टीपल इंटरव्यूज़ में सबको प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग सिखाई है। एंड प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? तो पीटर लिंच की बहुत फेमस सेइंग है कि इन अ वॉर, जब वॉर होती है, अब किसी कंबैटेंट पे बेट मत कीजिए। कंबैटेंट माने जो दो कंट्रीज लड़ रही हैं उन पे बेट मत कीजिए। यू शुड रैदर बेट ऑन कंपनीज हु आर सेलिंग देम बुलेट्स, बिकॉज कौन कंबैटेंट जीता वो हमें नहीं पता, बट ये ज़रूर पता है बिकॉज ऑफ वॉर डिमांड बढ़ने वाली है, तो जो कंपनीज बुलेट्स और गन्स बना रही हैं दोज कंपनीज विल डू वेल। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। सिमिलरली जब कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ था तो कैलिफोर्निया में बहुत रूमर्स फैले थे कि कैलिफोर्निया में बहुत गोल्ड मिल रहा है, तो बहुत सारे जो माइनर्स हैं वो वहाँ पे गए एंड एक्चुअली में इतना गोल्ड नहीं मिला। बट हु मेड रियल मनी? द कंपनीज हु आर सेलिंग देम पिक्स एंड शवल्स। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का आइडिया है डैट इज़ लिंक टू जो हमें माइकल मॉबसिन ने 2016 में एक रिसर्च पेपर में समझाया कि कंपनी की कंपेटेटिव एडवांटेज को कैसे एनालाइज करें। तो उन्होंने हमें वैल्यू चेन्स का आइडिया दिया कि यू शुड ऑलवेज लुक एट वैल्यू चेन्स ऑफ एन इंडस्ट्री और वैल्यू चेन्स ऑफ अ बिजनेस व्हेन यू आर स्टडिंग देम। तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ उनके पेपर में से। तो उन्होंने जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री का मैप बताया कि US के अंदर कुछ एयरलाइन कंपनीज हैं लाइक डेल्टा, साउथ वेस्ट, जेट ब्लू। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन होती है, राइट? जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे जो भी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री उसको रेगुलेट करती है। फिर एयरक्राफ्ट बनाने वाले लोग हैं, बोइंग, एयरबस, बॉम्बार्डियर, AVIC, एम्ब्रेयर। फिर पार्ट सप्लायर्स हैं, कंपनीज लाइक जनरल इलेक्ट्रिक, प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस एटसेट्रा। फिर देर आर कंपनीज हु सेल देम जेट फ्यूल्स। फिर ट्रेड यूनियंस भी होती हैं इस बिजनेस में, लेबर यूनियंस है कैबिन्स की, क्रू की और पायलट्स की। फिर फाइनली एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं लाइक एटलस एयर, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ग्रुप। फिर फाइनेंसिंग के लिए लीसिंग, बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स हैं। सिमिलरली ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं वहाँ पे और भी कंपनी लाइक सैबरे करके कंपनी है और ट्रैवल पोर्ट करके कंपनी है। फिर ट्रैवल इंटरमीडियरीज हैं लाइक ट्रैवल एजेंट्स, कॉर्पोरेट ट्रैवल डिपार्टमेंट्स, वेबसाइट एग्रीगेटर्स। वेबसाइट एग्रीगेटर्स में प्राइस लाइन, एक्सपीडिया, ट्रिप एडवाइजर, ये सारे हो गए। फिर फ्लाइयर्स हैं जो कमर्शियल और बिजनेस क्लास फ्लाई करते हैं। फिर एयर फ्रेट्स एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेसिस हैं लाइक UPS, FedEx, CH Robinson, एक्सपीडाइटर्स, फॉरवर्ड एयर एटसेट्रा। तो आइडिया क्या है इस वीडियो का कि हम लोग भी यही करेंगे कि हम लोग प्रॉक्सीज को आइडेंटिफाई करेंगे, बट हम लोग कैसे प्रॉक्सीज को आइडेंटिफाई करेंगे? बाय लुकिंग एट द इंडस्ट्री वैल्यू चेन्स। सो इन दिस वीडियो वील बी कवरिंग 20 to 25 इंडस्ट्री वैल्यू चेन्स एंड उसके साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी पूल भी एनालाइज करेंगे कि इस वैल्यू चेन में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, ROC या मार्जिन्स किस टाइप के बिजनेसेस बना रहे हैं एंड किस टाइप के बिजनेसेस क्या करते हैं इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर। सो वील स्टार्ट विद मल्टीपल इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइंस, FMCG इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पूरा जो आपका QSR इंडस्ट्री है उसका भी डिस्कशन करेंगे, FMCG इंडस्ट्री का भी डिस्कशन करेंगे। एंड वील टेक एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज क्यों ना हो, फ्रॉम सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी देखेंगे कि हु ऑल आर द प्रॉक्सीज, राइट? तो इंफ्रा में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग है, जैसे कुछ स्पेंडिंग है फॉर मेकिंग जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनको नाइट्रोक्स ऑक्साइड फ्री से करने के लिए। सो देर आर कंपनीज जो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम कर रही है, विच एंड्स अप बिकमिंग द प्रॉक्सी। कोई वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रही है, राइट? तो जब हम एयरलाइन इंडस्ट्री को देखेंगे तो वी लुक एट कंपनीज हु आर ऑल्सो प्रॉक्सी टू द ट्रैवलिंग इंडस्ट्री। सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस, इफ यू आर एक्साइटेड फॉर इट, डू ड्रॉप अ हेल यस इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी लगेगा या कौन सी इंडस्ट्री का वैल्यू चेन सबसे इंटरेस्टिंग लगता है इस वीडियो में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉक्सी देखते हैं, फर्स्ट प्रॉक्सी क्या है? दैट इज प्रॉक्सी टू कैपिटल मार्केट्स। तो प्रॉक्सी टू कैपिटल मार्केट्स क्या हुआ? बेसिकली अगर हम सब देख ऑब्जर्व करेंगे कि कैपिटल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हर इंडिया के अंदर फाइनेंशलाइजेशन बढ़ रही है और फाइनेंशलाइजेशन ऐसी स्पीड पर बढ़ रही है कि बैंक्स को डिपॉजिट्स के लिए चैलेंज हो रहा है आजकल। बैंक्स के जो कासा रेशियो डेट इज स्टार्टेड गोइंग डाउन बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन स्टॉक मार्केट्स एंड डेट फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो अगर आप इंडिया की कैपिटल मार्केट्स देखते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है वीडियो की। फर्स्ट लुक एट द वैल्यू चेन, देन प्रॉफिटेबिलिटी पूल्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉक्सीज। तो अगर आप इंडिया की कैपिटल मार्केट देखते हैं तो इंडिया की कैपिटल मार्केट में देर आर वेल्थ मैनेजर्स, देर आर एक्सचेंजेस, देर आर ब्रोकर्स, देर आर RTAs, देर आर कंपनीज हू हैंडल द डीमैट्स, कस्टोडियन सर्विसेज वाले हैं एंड देन देर आर आइडेंटिटी सर्विस के लिए कंपनीज हैं। तो इंडिया की कैपिटल मार्केट्स में देखते हैं तो वेल्थ मैनेजर्स में कौन कौन है? तो लिस्टेड स्पेस में 361 है, नुवामा है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, एंड मोतीलाल ओसवाल एक्चुअली ब्रोकर भी है।
बट आइडिया क्या है कि जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्टेबल रहता है बेसिकली, बिकॉज जब इक्विटी मार्केट गंदा करती है तो ये लोगों के पैसे डेट फंड्स के अंदर लगवा देते हैं, प्राइवेट कैपिटल भी रेज कराते हैं, खुद की AMCs खोलने लग गए. सो दिस इज इन वेल्थ मैनेजर्स, एंड वेल्थ मैनेजर्स इज अ वेल्थ मैनेजर मैनेजमेंट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. अगर आप 361 का एग्जाम्पल लेंगे तो 361 का भी अगर आप ROE या ROCE देखेंगे तो आप यू सी की 20-30% से ज़्यादा आपको ROE ROCE दिखेगा. सिमिलरली एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो एक्सचेंजेस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आते हैं. सिमिलर टू वेल्थ मैनेजर्स, एक्सचेंजेस के अंदर नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत हैं. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा है लास्ट 1.5 ईयर्स में जब FNO लॉन्च हुए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक प्राइस ने क्या करा. सिमिलरली MCX में जब ऑप्शंस लॉन्च हुए तो ऑप्शंस की वजह से MCX का जो ऑप्शंस का CAGR आ रहा है, आई थिंक दैट इज मोर देन 200-300%. NSE की बात करेंगे तो 85-90% इनका जो टर्नओवर है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय FNO. तो अगेन मेजर प्रोपोर्शन फॉर ऑल थ्री एक्सचेंजेस इज की FNO बहुत डोमिनेट कर रहे हैं. दीज आर ऑल्सो एसेट लाइक बिजनेसेस. MCX के केस में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर में वन ऑफ था, बट अदरवाइज द इकोनॉमिक्स दीज बिजनेसेस इन्जॉय आर ट्रूली फिनोमिनल इन नेचर. तो एक्सचेंजेस का हमने डिस्कशन करा. फिर हम ब्रोकर्स देखते हैं तो ब्रोकर्स विल बी द मोस्ट साइक्लिकल पार्ट ऑफ द पाई आउट ऑफ द एंटायर कैपिटल मार्केट साइकिल. बिकॉज ब्रोकर्स के केस में क्या होता है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बूम्स एंड बस्ट के पीरियड होते हैं. तो एंजल वन लिस्टेड जीरो धाए मैं तो बार बार कहता हूँ बिकॉज दे कैन ऑल्सो एडवर्टाइज एंड देर विनिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो. बट जीरो धा के एथिक्स ऐसे कि वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, बट एंजल वन बहुत एडवर्टाइज करता है. फिर मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है, एंड देन एक IIFL सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पे आता है, कोटक सिक्योरिटीज़ भी आता है. अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के रिजल्ट देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में से तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे इस बारे. देन रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स आते हैं तो जिसमें कार्वी और कैम्स आते हैं. तो कार्वी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ये इंटरनेशनल भी बिजनेस विन कर रहे हैं और AIFs जो जितने भी खुल रहे हैं उनके अंदर बहुत बिजनेस विन कर रहे हैं कार्वी वाले. कैम्स भी सिमिलरली यही कर रहे हैं. तो RTAs आर लाइक सेक्रेटरी ऑफ म्यूचुअल फंड, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी यही डील करेंगे, कस्टमर से भी यही डील करेंगे एंड म्यूचुअल फंड से भी यही डील करेंगे. और जो भी म्यूचुअल फंड के काम होते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होगी, डेटा को स्टोर करना, दैट ऑल इज डन बाय RTAs, दैट इज कार्वी एंड कैम्स. वेरी लुक्रेटिव इकोनॉमिक्स बट मार्जिन आर कैप बिकॉज एज एंड वेन यूर AUM ग्रोज आपकी फी कटते जाती है. देन देर आर कंपनीज वो आर बेसिकली इन टू DMAT सर्विसेज. तो यहाँ पे CDSL और NSDL आते हैं. तो अभी CDSL की कल ही ग्रोथ नंबर्स आए तो आई थिंक दे हैव रिपोर्टेड 105% ग्रोथ बिकॉज एज एंड वेन मोर फाइनेंशलाइजेशन हैपन्स इट इज नेचुरल दैट पीपल विल स्टार्ट ओपनिंग मोर अकाउंट्स. बट CDSL और NSDL दोनों एक शैलो साइक्लिकल बिजनेस है बिकॉज IPO इनकम भी इनकी इनकम पे बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. तो इस बार IPO बहुत अच्छे थे इस क्वार्टर में तो इस वजह से CDSL की ग्रोथ बहुत थी. तो CDSL एंड NSDL टाइप बिजनेसेस जब मार्केट डाउन जाती है तो ये भी साथ डाउन जाते हैं. बट अगेन दीज बिजनेसेस हैव ऑपरेटिंग लेवरेज. तो मैंने CDSL का एक वीडियो करा था वो भी देख सकते हैं. बट दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉक्सीज टू द मार्केट्स. फिर कस्टोडियन सर्विसेज वाले हैं, यहाँ पे नुवामा वेन दिस वन ऑफ द प्लेस, ऑर्बिस आता है एक स्टॉक होल्डिंग करके कंपनी आती है. सो दीज आर इन टू प्रोवाइडिंग कस्टोडियन सर्विसेज. अगेन अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, इट्स लाइक अ टोल रोड बिजनेस राइट. तो भी लिस्टेड स्पेस में जो नुवामा वेल्थ मैनेजर्स है उसके अंदर ही कस्टोडियन सर्विसेज आती है नुवामा वेल्थ की. दिस इज अगेन लाइक अ टोल रोड बिजनेस. फिर आइडेंटिटी सर्विसेज में ई मुद्रा आता है सिग्नेचर में, एंड मेनली प्रोटीन आता है. प्रोटीन अगर आपने देखा हो स्मॉल केस में भी साइन अप करना हो तो सिग्नेचर जो आप डिजिटल साइन करते हैं दैट इज ऑल सर्विस्ड बाय प्रोटीन बिकॉज आप TKYC फेच करना है तो प्रोटीन वहाँ पे आता है. सो दिस इज वॉट द कैपिटल मार्केट प्लेज आर, दिस इज वॉट द प्रॉक्सीज आर. इफ यू आस्क मी विच माइट बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द बाय, सो जो DMATs हैं दीज आर वेरी प्रॉफिटेबल, RTAs आर वेरी प्रॉफिटेबल, ब्रोकर्स आर वेरी साइक्लिकल, एक्सचेंजेस आर ऑल्सो वेरी साइक्लिकल लाइक ब्रोकर्स बट वेरी प्रॉफिटेबल. वेल्थ मैनेजर्स आर लेस साइक्लिकल इवन देन एक्सचेंजेस बिकॉज डेट फंड वेट फंड में भी शिफ्ट कर देते हैं, वेंचर कैपिटल में भी ले जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिंग में भी ले जाते हैं. कस्टोडियन सर्विस एक टोल रोड बिजनेस है एंड आइडेंटिटी सर्विसेज में प्रोटीन और ई मुद्रा है. प्रोटीन अभी इतना मार्जिन वाइज इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर बिजनेसेज राइट. सो दिस इज वॉट द कैपिटल मार्केट प्लेयर्स आर देर इन द मार्केट एंड दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉक्सीज. तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो DRHP अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कोई अगर एंजल वन का DRHP पढ़ लें या रिसेंट कोई भी किसी कंपनी का लाइक IPO आया हो या स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर, तो जैसे उनका DRHP पढ़ेंगे यू विल आइडेंटिफाई कि अच्छा इस सेक्टर के अंदर ऐसा चलता है राइट, इस सेक्टर का ये बेसिकली फ्लो है, सेक्टर में ये प्लेयर्स है, दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉक्सीज टू कैपिटल मार्केट्स. देन एक बहुत बड़ा इंडिया में ट्रेंड चल रहा है दैट इज प्रॉक्सी टू लग्जरी कंजम्पशन. अब प्रॉक्सी टू लग्जरी कंजम्पशन में हम क्या देखते हैं, तो इंडिया में इट इज एस्टिमेटेड कि पर कैपिटल इनकम बढ़ते जाएगी और एक बार पर कैपिटल इनकम जब $3,000 क्रॉस करेगी तो क्या आएगा कि लोग रोटी कपड़ा मकान की कम बात करेंगे एंड लोग अपने लेजर और कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्चा करेंगे. तो ये तो हम देख ही रहे होते हैं. सो आई थिंक विजय केडिया सर ने एक बात डायलॉग बोला था अपने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में, वेन लग्जरी बिकम्स कंजम्पशन एंड कंजम्पशन बिकम्स मैंडेटरी, दैट इज वेयर यू नो द सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल. ऐसे उन्होंने करके एक लाइन बोली थी, एंड ये लाइन उन्होंने एविएशन के स्पेस में बोली थी, दैट इज फॉर इंटर ग्लोब एविएशन. Because now it is very difficult to not go via airways versus railways, right? Suppose if I have to go from Delhi to Mumbai, so again, aviation is one of the must do things for me, right? That I have to get an airline ticket. So that is again a part, now it is not luxury consumption, now it is a basic necessity. But again, because when luxury consumption becomes a basic necessity, that sector comes into fourth. Because here are also many players bankrupt. And here are also retail, people go to malls, so Phoenix Mills is one of the primary proxies to luxury consumption, because Phoenix Mill ke andar again malls mein the waise aap shopping bhi kar sakte hain, but wahan pe luxury areas bhi hote hain, right? So again Phoenix Mill is something jo urban consumption ke andar aa raha hai, luxury consumption mein aa raha hai. Then auto dealers mein dekhenge to Landmark karke company recently list hui hai, so this is a company jo Mercedes ki dealer hai, and aur bhi jo luxurious car makers hain unki dealer hai. BYD ki bhi I think one of the dealers hai, so this is Mercedes largest dealer in India. So again, it's an auto dealer which is listed. So again, it is like a proxy. But again, dealer economics उतनी अच्छी नहीं है जितनी किसी और शायद से business की हो, but क्योंकि dealers के margins बहुत squeezed रहते हैं. फिर hotels के अंदर आप देखेंगे तो Chalet Hotel, Indian Hotel, EIH, right? All of these are part of luxury consumption space. फिर रिलायंस रिटेल आता है, बिकॉज रिलायंस रिटेल ने बर्बरी के साथ टाइप करा हुआ है, बॉस के साथ टाइप करा हुआ है, जितने भी ये महंगे महंगे ब्रांड्स हैं रिलायंस रिटेल इंडिया के अंदर लेके आए आफ्टर डूइंग ऑल दिस टाइप्स, राइट. तो अजियो में आप देखेंगे तो अजियो में बहुत लाइक महंगे ब्रांड्स भी लोग खरीद रहे हैं. सो अगेन इट्स अ प्रॉक्सी टू लग्जरी कंजम्पशन ट्रेंड. ज्वेलरी के अंदर आप देखेंगे तो अगेन अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट चल रहा है धीरे धीरे, एवरेज टिकट साइज भी बढ़ा ज्वेलरी में. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल टाइटन है. फिर एक सदर्न इंडिया प्लेयर है जो सिर्फ एक तमिलनाडु स्टेट से, डेट इज थंगामायन ज्वेलर्स करके, बिकॉज सदर इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही है वर्सेज देश पार्ट्स. फिर कल्याण ज्वेलर्स आता है, सेंको भी यहाँ पे आते हैं. सो अगेन इट्स अ ज्वेलरी इज अ पार्ट ऑफ लग्जरी कंजम्पशन. फिर लग्जरी हाउसिंग आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया यार, मतलब आप देखेंगे तो DLF के कुछ कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. जैसे वो प्रोजेक्ट्स आते हैं, महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट डे पे ही सेल आउट हो जाते हैं, बिकॉज हाउसिंग इज ऑल्सो बिकमिंग अ लग्जरी कंजम्पशन दीज डेज. तो यहाँ पे देर आर बिजनेस लाइक गोडरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, DLF, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस भी है, बट दीज कंपनीज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट ये कंपनीज लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी करती हैं. फिर वॉच और वॉच कंपोनेंट्स में इथॉस आता है, और एक इथॉस की एक मदर कंपनी आती है विच इज द होल्डिंग कंपनी KDDN, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स का बिजनेस होता है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लग्जरी कंजम्पशन, क्योंकि इंडिया से ये वॉच कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं. So that is again a proxy trend which is playing out right now, right? In this, if you are asking the most lucrative economics, I think it's a very difficult task to tell, because watch components mein ethos agar achhe margins kamata hai to cash flow nahi kama pata. Jewelry mein bhi agar aap achhe turnover ya inventory turn kar rahe hain to cash flow nahi ban pata, because you have to keep reinvesting in inventory building. But inventory yahan pe gold hoti hai to zyada tension nahi rehti. Auto dealership itna acha economics nahi hai business ki. Then hotels की economics up cycle में तो बहुत अच्छी होती है, up cycle में तो इनका ROC 20-30-40% भी दिखने लग जाता है, down cycle में single digit ROC रह जाता है. Aviation में Indigo की अगर हम X of lease expense देखेंगे तो 50-60% ROC है, but again अगर कोई भी macro event होता है तो Indigo is the first one to get impacted. Phoenix Mills के भी economics is more like a rental business. Reliance Retail का भी बहुत ज़्यादा phenomenal economics नहीं है, okay economics है. लग्जरी हाउसिंग में अगेन रियल इस्टेट इन अ गुड साइकिल इज अ नेट, सो अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इन अ गुड साइकिल रियल इस्टेट इज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल बिजनेस. नाउ यू जस्ट थिंक व्हाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. सो दिस इज हाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सेक्टर लुक्स लाइक. लग्जरी कंजम्पशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स हैं, सबका इकोनॉमिक्स डिफरेंट रहता है. फिर हम आते हैं टुवर्ड्स प्रॉक्सीज इन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. तो हमें दो तरीके का क्रैम्स होता है, एक एग्रो के अंदर क्रैम्स हो रहा है और एक फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्रैम हो रहा है. तो क्रैम्स इज लाइक आप जो इनोवेटर्स हैं, जैसे ब्रिस्टल मेयर स्क्विप हो गया, राइट, या फिर फाइजर हो गया, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तो पहले फार्मा का एग्जाम्पल लेते हैं. तो विद इन इंडिया क्रैम्स वाले कौन से हैं, न्यूलैंड लैब्स है, आरती फार्मा लैब्स है, सिंजीन है, नॉरस लैब्स है. तो ये वो कंपनीज है जिनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है विद इन इंडिया सिचुएटेड है. आउटसाइड इंडिया एक पीरामल फार्मा और डिश्वन कार्बोजन है, इन दोनों के भी इंडिया के अंदर प्लांट्स है, बट आउटसाइड इंडिया भी प्लांट्स हैं इनके. तो राइट, वी कैन से विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. तो इनका ROC इतना लुक्रेटिव नहीं है जितना इन कंपनीज के, राइट, बिकॉज आप आउटसाइड इंडिया सेटअप कर रहे हैं तो यूरोप वूरोप में बिजली का खर्चा ज़्यादा है या पावर कॉस्ट ज़्यादा है. फिर जेनेरिक फार्मा की बात करें तो जेनेरिक CDMO के अंदर कौन है, जो बेसिकली कॉपीकैट ड्रग्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है, विंडलास बायोटेक है, ग्लैंड फार्मा है. एग्रो की बात करते हैं तो जेनेरिक एग्रो के अंदर जेनेरिक CDMO में पंजाब केमिकल्स आते हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग सम पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स, एस्टेक लाइफ साइंसेज आते हैं, इन लोगों को भी कुछ कुछ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। मेजरली यहाँ पे PI इंडस्ट्रीज और SRF आते हैं विच आर बोथ इन पेटेंटेड एग्रो। अगेन दिस थीम इज लाइक अ प्रॉक्सी टू द R&D स्पेंड्स बाय इनोवेटर्स इन द वर्ल्ड। जो भी दुनिया के अंदर R&D स्पेंडिंग हो रही है उसके लिए ये थीम प्रॉक्सी है। फार्मास्यूटिकल में जो CDMO मार्केट साइज है डेट इज इक्वल टू $40 billion प्लस, एग्रो में इट इज क्लोज टू $5 billion। तो फार्मा का जो CDMO साइज है डेट इज 8x द टाइम्स ऑफ एग्रो, एंड दिस इज वाई अगर आप देखेंगे PI और SRF दोनों एग्रो में फार्मा में आने की बात करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि एग्रो का बिजनेस साइक्लिकल है वर्सेस फार्मा, एंड फार्मा में अगर एक बार आपका बिजनेस शॉर्ट हो गया तो बहुत हाई ROCE और मार्जिन बनते हैं। जैसे DV's लैब्स भी विद इन इंडिया आते हैं एंड उसका ROCE ROE तो बहुत हाई रहता है। देन कमिंग टू प्रिसिशन इंजीनियरिंग, तो एक तो नॉर्मल इंजीनियरिंग होती है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग होती है जहाँ पे आपको कॉम्पोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन से बनाने होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑटो और इंडस्ट्रियल्स के अंदर हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो ऑटो में कौन सी कंपनीज आती है प्रिसिशन इंजीनियरिंग में? एक तो हमारे पास सोना BMW आती है यहाँ पे, राइट। देन हमारे पास शिवालिक बायो मेटल आता है। तो सोना BMW जो पूरी ट्रांसमिशन है EV की उसके अंदर काम करती है, जो बेसिकली डिफरेंशियल गियर्स बनाती है। कंपनी है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे मार्जिन भी कर रही है, बट वैल्यूएशन हमेशा से बहुत आई थी। आई थिंक हमने इस बिजनेस की वीडियो भी करी थी और हमने ये बताया था कि कंपनी बहुत अच्छी है बट इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि IPO टाइम से ही वैल्यूएशन 100 की भी था, अब जाके 70 पे आया इवन दो द बिजनेस इज ग्रोइंग 20-30%। देन शिवालिक बायोमेटल यहाँ पे आते हैं जो बायोमेटल्स और शंट्स बनाते हैं। तो विशाडेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स, बट अभी US में बहुत भारी डीस्टॉकिंग चल रही है EVs की, बिकॉज लोग EV के जो अर्ली अडॉप्टर थे और लोग EV नहीं खरीद रहे, तो शिवालिक बायोमेटल भी इस टाइम पे मैसिव हेडविंड्स के अंदर चल रहा है इस चक्कर में। फिर एक यूनिपार्ट्स बिजनेस आता है, एक सनसेरा इंजीनियरिंग आता है विच इज़ इनटू टू व्हीलर ऑटो पार्ट स्पेस, एंड दे आर ऑल्सो इनटू एरोस्पेस इंजीनियरिंग, राइट। सो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर भी है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस, सो वील ऑल्सो एनालाइज दिस सून। बट अगेन दिस इज इनटू प्रिसीजन इंजीनियर्ड पार्ट्स, राइट। देन रामकृष्णा फोर्जिंग्स आता है विच इज इनटू अगेन फोर्ज्ड कंपोनेंट्स फॉर व्हीकल्स, चाहे वो CV हो चाहे वो EVs हो। एंड RACL गियरटेक यहाँ पे गियर्स बनाते हैं, प्रिसीजन इंजीनियर्ड गियर्स बनाते हैं ऑटो के अंदर फॉर लग्जरी बाइक्स एंड स्टफ। एंड अभी तो लग्जरी कार्स के अंदर भी इनको फर्स्ट कंपोनेंट्स का ऑर्डर मिला है, राइट। सो RACL गियरटेक भी ऑटो के अंदर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। फिर इंडस्ट्रियल्स के अंदर देखेंगे तो एलिकॉन इंजीनियरिंग एक कंपनी है, इसे रिसेंटली हाई स्पीड गियर्स की मार्केट एंटर करी है जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ऑलरेडी करती है, राइट। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग और एलिकॉन प्रिसीजन इंजीनियर्ड गियर्स के अंदर है। एलिकॉन ने रिसेंटली वो मार्केट एंटर करी है जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग कर रही है ऑलरेडी। TDDR यहाँ पे आता है, ये कंपोनेंट्स के अंदर है, तो दे आर इनटू प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स, एंड साथ साथ ये अपने वॉच के भी कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी यहाँ पे आती है, रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड त्रिवेणी टर्बाइन्स यहाँ पे आती, और भी बिजनेसेस होंगे बट प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, बिकॉज सी प्रिसीजन इंजीनियरिंग रिक्वायर्स नो हाउ, बिकॉज आपको एकदम प्रिसाइसली इंजीनियर करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड सेकेंडली यू नीड टू क्रैक द एक्सपोर्ट कस्टमर, इट्स नॉट ईजी, राइट। तो जैसे एलिकॉन ने अभी 11 OEMs के साथ साइन अप करा है, राइट। तो यूरोपियन OEMs है, 11 OEMs हैं जिनके साथ साइन अप करा है प्रिसीजन इंजीनियर्ड गियर्स और नॉर्मल इंडस्ट्रियल गियर्स के अंदर एलिकॉन ने, राइट। सो डैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पार्ट इंडस्ट्रियल्स के अंदर प्रिसीजन इंजीनियरिंग में। इकोनॉमिक्स देखें तो जैसे सोना BMW के मार्जिन बहुत हाई हैं बट वैल्यूएशन भी साथ हाई है। शिवालिक बायोमेटल्स के भी मार्जिन 23-25% है, बट अगेन अभी हेडविंड्स में। एलिकॉन इंजीनियरिंग के भी मार्जिन 22-23% के अभी टेलविंड्स के अंदर चल रहे हैं। TDDL के भी मार्जिन इज अबव 20%, राइट। दे आर ऑल्सो ग्रोइंग वेल। त्रिवेणी टर्बाइन्स इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेल बिकॉज पावर सेक्टर इज डूइंग वेल। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्पीड गियर बिजनेस बहुत अच्छे से इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेंड्स टू वॉच आउट फॉर, एंड दीज आर सम ऑफ द प्रॉक्सीज जो हम वैल्यू चेन में देख सकते हैं इनकी। फिर हम बात करते हैं FMIG प्रोडक्ट्स की, तो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स की जब हम बात करते हैं, तो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होती है? जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है वैसी फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं विच आर नीडेड टू बी कंज्यूम्ड अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन कंजम्पशन में क्या होता है कि बेसिकली यू नीड टू कीप रिप्लेसिंग देम, राइट। सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रीफ्रैक्ट्रीज स्टील प्रोडक्शन का 2-4% कॉस्ट रीफ्रैक्ट्रीज के अंदर लगता है, बट रीफ्रैक्ट्रीज आर अ प्रॉक्सी टू स्टील प्रोडक्शन ग्रोथ इन इंडिया, राइट। सो इट्स लाइक एन FMCG प्ले, राइट। कि स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडिया के अंदर रिफैक्ट्रीज का ग्रोथ आएगा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे RHI मैग्नेसीटा है, वेसुवियस है, IFGL है। अगेन आपको यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, कौन सी MNC अग्रेसिवली ग्रो करना चाहती है, कौन क्या करना चाहती है। जैसे RHI मैग्नेसीटा हमने 2020 में भी कवर करा था इस चैनल में उस टाइम पे, बट बीच में वैल्यूएशन 80-90-100 PE पे चला गया था, बहुत एक्विजिशन कर ली इन्होंने, बैलेंस शीट को बहुत डेट हैवी और लाइक बहुत डाइल्यूशन कर दिया बैलेंस शीट पे, तो आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना पड़ेगा। वेसुवियस भी यहाँ पे एक कंपनी और IFGL रिफैक्ट्रीज भी एक कंपनी है, और एक कंपनी है स्टील के प्रॉक्सीज में फॉसेस्को के नाम से, फॉसेको के नाम से, जो फाउंड्री के अंदर है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस विच इज लाइक अ प्रॉक्सी टू स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में देखते हैं तो टाइम टेक्नोप्लास्ट आता है और ड्रम क्लोजर्स और कैप्स के अंदर टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री आता है, विच इज लाइक अगेन FMIG प्रोडक्ट एंड इट्स अ प्रॉक्सी टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। माइनिंग के अंदर तेगा इंडस्ट्रीज और AI इंजीनियरिंग आता है। हमने ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर वीडियो करी थी जो हमने तेगा इंडस्ट्रीज आज से 7 मंथ्स पहले कवर करा था। सो बेसिकली जो मिल लाइनर्स होते हैं और जो लाइन्स होती हैं जिसके अंदर ग्राइंडिंग होती है बहुत ज़्यादा मेटल की और ओर की, तो वो बार बार चेंज होती है, रिप्लेस होती है, दैट इज व्हाट तेगा इंडस्ट्रीज मेक्स। एंड AI इंजीनियरिंग उसके जो कंचे होते हैं, वो जो बॉल्स होते हैं जिसको हम लाइक ग्राइंडिंग मीडिया कहते हैं, दैट इज व्हाट AI इंजीनियरिंग मेक्स, राइट। सो अगेन एन FMIG टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बेयरिंग्स के अंदर SKF, टिमकिन, शाइफलर, आशा इंजीनियरिंग जो बेयरिंग रिंग्स बनाता है, एंड लाइक रोलेक्स रिंग्स आता है जो बेयरिंग के रिंग्स बनाते हैं, राइट राइट। सो उसके साथ साथ SKF, टिमकिन, शाइफलर, तो शाइफलर का भी रिसेंटली गाइडेंस वॉज मच बेटर, टिमकिन का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव साइड है 71 times, तो वैल्यूएशन आपको देखना पड़ेगा, बट दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स। टायर्स के अंदर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है, बिकॉज एवरी 6-8 months के अंदर आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो हैवी टायर्स होते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है, माइनिंग के अंदर टायर्स को रिप्लेस करना पड़ता है। केबल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ FMIG बिकॉज टुडे यू कॉन्ट डू एनी थिंग विदाउट केबल्स, एंड केबल्स आर यूज ईच एंड एवरी वेयर, चाहे वो कंट्रोलिंग केबल हो या इंडस्ट्रियल केबल्स हो। तो KEI इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो हमने चैनल पे पहले कवर करा था, इट इज जस्ट देयर इन दैट सेगमेंट, राइट। अपार इंडस्ट्रीज इसमें आता है, RR केबल्स आता है, पॉलीकैब इसके अंदर आता है। फिर मैकेनिकल सील्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी आती है सीलमैटिक के नाम से, जो बेसिकली लाइक एनुअली इनकम अर्न करती है सील्स के ऊपर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ यूनिक बिजनेसेस जो सबको इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए। सो सीलमैटिक के नाम से बिजनेस आता है। अगेन यहाँ पे क्या होता है बिजनेस में कि वन टाइम प्रोडक्ट सेल होती है, फिर उसके बाद उस पर आप एनुअली इनकम स्टार्ट कर देते हो, कि बार बार यू कीप सेलिंग द प्रोडक्ट एंड यू कीप अर्निंग रेवेन्यूज। एंड इनकी जो इकोनॉमिक्स होती है दैट इज सच कि इनके अंदर जो साइक्लिकलिटी दैट इज लेसर देन द एंड यूजर इंडस्ट्रीज। जैसे अगर हम डिस्कशन करेंगे सपोज रिफैक्ट्रीज का करते हैं, तो स्टील प्रोडक्शन ऊपर नीचे जा सकते हैं, सो स्टील के प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट रिफैक्ट्रीज की प्रोडक्शन मोर और लेस स्टेबल रहती है। मैकेनिकल सील्स के अंदर क्या होता है कि एक बार आपकी सील लग गई तो 30 years के लिए आपके बार बार एनुअली इनकम क्रिएट हो जाती है, बिकॉज योर सील हैज़ टू बी रिप्लेस्ड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years द सील का जो अमाउंट है इट इज पेड बैक मोर देन 8-10 times, दैट इज द साइड टाइप ऑफ बिजनेस। सो FMIG इज वन ऑफ द कैटेगरीज प्रॉक्सीज के अंदर विच इज लाइक वर्थ स्टडिंग। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में टेक्नोक्राफ्ट और टाइम टेक्नोप्लास्ट भी है, तो बट दीज आर अ बिट लोअर ROE बिजनेसेस, बट अगेन यू मस्ट स्टडी देम इंडिपेंडेंटली बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन सी प्रॉक्सीज जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स के। फिर जब हम EV की बात करते हैं तो EV के प्रॉक्सीज क्या हैं, तो ऑटो OEMs होती हैं, तो ऑटो OEMs क्या हैं, दैट इज जैसे टेस्ला हो गया या BYD होगी, सो दीज आर द कंपनीज, जैसे मारुति हो गया, तो जो ऑटो खुद बनाती है, राइट, दोज जो कंपनी जो लाइक EVs मैन्युफैक्चर करी है, बेसिकली दोज आर द एग्जांपल्स। देन EVs बनाने वाले के यहाँ पे नीचे प्रॉक्सीज कौन से हैं, तो देर आर कंपनीज विच आर इन टू बैटरी मैनुफैक्चरिंग, एक्साइड और एमरॉन यहाँ पे आते हैं। एक्साइड का भी रिसेंटली किया और हुंडई के साथ टाया हुआ है फॉर EV बैटरीज इन इंडिया। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सी कंपनीज आती हैं, दैट इज उनके जो केमिकल्स और सेपरेटर्स बनते हैं, तो यहाँ पे देर आर कंपनीज लाइक न्योजेन केमिकल्स, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स, इन दोनों का प्लांट आ चुका है। अमी ऑर्गेनिक्स और एथर भी आते हैं यहाँ पे। देन सॉफ्टवेयर के अंदर KPIT आता है, टाटा इलेक्सी आता है, टाटा टेक्नोलॉजीज आता है। ऑटो पार्ट्स में सोना BLW, लाइक मदर्स एंड सुमी वायरिंग करके जो एक कंपनी है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट EV मेकर्स को वायर्स भी सप्लाई करती है। डिवगी टॉर्क करके एक कंपनी आती है, शिवालिक बाई मेटल आता है, तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो EV के अंदर अभी कर रही हैं। जैसे वन ऑफ द बिजनेसेस एक स्मार्ट लॉक बनाते हैं, राइट, सो वो टू व्हीलर के अंदर भी है, EV के अंदर भी है। जो उनो मिंडा दैट इज ऑल्सो डूइंग द सेम। प्रिकॉल भी EV एग्नोस्टिक पार्ट्स बना रहे हैं, राइट, दैट इज व्हीकल एग्नोस्टिक पार्ट्स। सो ऑल दीज बिजनेसेस आर प्रॉक्सीज टू दिस ट्रेंड, राइट? सो यू मस्ट आइडेंटिफाई देम इंडिपेंडेंटली. जैसे KPIT इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉक्सीज. तो पूरे ERNDE के अंदर स्लो डाउन आ गया, बट KPIT के अंदर स्लो डाउन नहीं आया. KPIT की ग्रोथ अभी भी 30-40-50% की आ रही है. सो दैट इज अगेन प्रॉक्सीज टू EVs. फिर मेटल्स एज अ प्रॉक्सी, जब हम पूरे केपेक्स साइकिल की बात करें तो मेटल्स आर ऑल्सो सर्विंग एज अ प्रॉक्सी, बट अगेन दिस इज अ वेरी साइक्लिकल प्रॉक्सी. यहाँ पे एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर 2-3 ही है, उसमें से हिंडाल्को लार्जेस्ट है. जिंक एंड सिल्वर में एक ही मैन्युफैक्चरर है हिंदुस्तान जिंक के नाम से. डाइवर्सिफाइड मेटल्स के अंदर श्याम मेटालिक्स है, बहुत सारे मेटल्स के अंदर काम करते हैं. स्टेनलेस स्टील के अंदर एक ही मेजर मैन्युफैक्चरर है जिंदल स्टेनलेस है. स्टील के अंदर JSW, टाटा स्टील, JSPL, सेल, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है कार्बन स्टील के. बट मेटल ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रॉक्सी, बट दिस इज अ सेगमेंट विच इज वेरी साइक्लिकल. तो मैं इस पर थोड़ा सा कम डिस्कशन करेंगे. वेन हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की, या फिर हम बात करते हैं टुवर्ड्स द पावर सेक्टर, एंड पावर सेक्टर में कौन कौन से प्रॉक्सीज हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड बाय FY50 इंडिया के अंदर $500 बिलियन का ट्रांसमिशन पे केपेक्स होएगा. तो अगर ट्रांसमिशन पे $500 बिलियन का केपेक्स होता है, तो वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज कुड बी अ कंपनी बाय द नेम ऑफ अपार इंडस्ट्रीज, बिकॉज ये कंडक्टर्स बनाते हैं. एंड कंडक्टर्स के साथ साथ ये कंपनी क्या करती है कि कंपनी बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल भी बनाती है और केबल्स भी बनाती है, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरीज, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर भी एक हायर एल्यूमिनियम वाला मॉडल आया विच इज रिप्लेसिंग द ओल्डर वंस, जिसमें अपार इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स ओवर देयर. और फिर आपके ट्रांसफार्मर्स में पावर ट्रांसफार्मर्स वाले तो अच्छा कर ही रहे हैं, इनकी वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई हैं, तो इसलिए बात करते इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, फिर भी सेक्टर समझा देता हूँ. तो हमें हिटाची एनर्जी, GT&E, CG पावर, सीमेंस, स्नाइडर, ऑल दीज कंपनीज आर देयर इनटू पावर ट्रांसफार्मर्स ऑल्सो. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स भी है. पावर ट्रांसफार्मर्स में ट्रिल करके भी एक कंपनी आती है. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में लाइक वोल्ट एम्प आता है, लाइक शिल्टर टेक्नोलॉजीज आता है. बट अगेन द वैल्यूएशंस यू हैव टू स्टडी इंडिपेंडेंटली कि वैल्यूएशंस हाई है या लो है, आपको देखना पड़ेगा. कैपेसिटर्स में भी हिटाची एनर्जी और CG पावर आता है. इंसुलेटर्स में हिटाची एनर्जी और आदित्य बिरला इंसुलेटर आता है. फिर केबल्स एंड वायर्स में KEI, पॉलीकैब, यूनिवर्सल और हैवल्स आता है, राइट? देन स्विच गियर्स के अंदर हिटाची, सैल्जर, GE, श्नाइडर, सीमेंस, ये सारी कंपनीज आती है. एनर्जी मीटर्स में जीनस, HPL इलेक्ट्रिक एंड एक दो कंपनीज और भी आती हैं. तो अगेन अनलिस्टेड में भी एक दो कंपनीज हैं, लाइक आई बीन स्टडिंग देम, जैसे एक किम्बल टेक्नोलॉजीज करके कंपनी आती है एनर्जी मीटर्स में. डैट इज अगेन अ प्रॉक्सी टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेंडिंग. फिर ट्रांसमिशन टावर के अंदर स्किपर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन टावर कंपनीज, डैट इज एयर. फिर KEC और कलपत्रू EPC में काम करते हैं. फिर टाटा प्रोजेक्ट्स LNT भी आता है. कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ अपार आता है, राइट? सो अगेन दिस इज एन इंटायर इंडस्ट्री विच इज सर्विंग एज अ प्रॉक्सी. फिर यहाँ पे EPC प्लेयर्स भी आते हैं. तो सोलर EPC प्लेयर्स एक वारी RT आ गया, ओरियाना आ गया, फिर विवियाना भी वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करता है, राइट? सो अगेन दोज आर दोज कंपनीज जो यहाँ पे कुछ ना कुछ EPC सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. बट अगेन वैल्यूएशंस आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ने पड़ेंगे. बट अगेन दिस इज अ प्रॉक्सी टू द इंटायर पावर स्कीम, राइट? पावर थीम के प्रॉक्सी हैं दिस कंपनीज. फिर प्रॉक्सीज टू माइनिंग की बात करते हैं, तो दिस इज अ प्रॉक्सी टू मेटल ओनली, कि अगर मेटल बन रहा है तो माइनिंग भी तो होगी. तो मैगनीज के अभी प्राइसेस बढ़ने लग गए हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है. तो यहाँ पे मैगनीज जो MOIL करके कंपनी इंडिया के अंदर, इट इज़ वन ऑफ द मोनोपोली कंपनीज मैगनीज ओर की प्रोडक्शन में. मैगनीज ओर से बनता क्या है, फेरो अलॉय बनता है, फेरो मैगनीज और बाकी तरीके के 3 फेरो अलॉयज बनते हैं. फिर इसमें माइथान अलॉय इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स. तो 2 ईयर हाई प्राइसेज हो गए अभी फेरो अलॉय मैगनीज के, लाइक फेरो मैगनीज के. देन आयरन ओर में संदूर मैगनीज, सादरा एनर्जी, GPIN, लॉयड मेटल्स, ऑल दीज कंपनीज आती है. तो आयरन ओर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि कितनी इंडिया के अंदर पे स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उतनी आयरन ओर प्रोडक्शन बढ़ेगी. तो यहाँ पे लॉयड मेटल्स पे चलते हैं और इनकी रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आते हैं. एंड रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डाली है, तो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ कि इन्होंने क्या डाला है कि इंडिया के अंदर कितनी लाइक प्रोडक्शन अगर स्टील की बढ़ती है तो आयरन ओर की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए. सो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड विच आई जस्ट शोकेस इट टू यू. दैट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि अच्छा इंडिया में कितना आयरन ओर रिक्वायर्ड है. जस्ट ओवर एयर कि FY23 में क्रूड स्टील की प्रोडक्शन थी 160 मिलियन टन पर एनम की, वेरएज FY30 में KS-1 में एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 393 मिलियन टन की प्रोडक्शन होती है, राइट? तो इस सिनेरियो में जो आपका आयरन ओर रिक्वायर्ड होएगा, दैट इज समवेयर क्लोज टू 393 मिलियन टन पर एनम. और अगर सेकेंड केस हो जाता बुलिश वाला केस, 437 मिलियन टन की प्रोडक्शन हो जाती है, तो 437 मिलियन टन पर एनम का आयरन ओर की प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, राइट? सो दैट इज द इंटरेस्टिंग सिनेरियो, राइट? सो इंडिया वुड नीड एन आयरन ओर EC कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 573 to 637 मिलियन टन पर एनम. सो डैट इज़ वेयर ये बहुत सारी जो आयरन ओर की कंपनीज हैं, इनको अभी अप्रूवल्स मिल रहे हैं आयरन ओर की माइंस को एक्सपैंड करने के लिए. रीज़न बीइंग बिकॉज दैट इज़ बिकॉज स्टील की अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपको आयरन ओर की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज यू हैव टू कीप इम्पोर्टिंग स्टील, राइट? तो यू हैव टू कीप इम्पोर्टिंग आयरन ओर, राइट? सो दैट इज़ वन ऑफ द इशूज़ विच अराइजेज. So that is how things look like for this sector also. This is why some of these companies are getting fast approvals for production capacities. Then yahan pe agar hum on businesses dekhte hain to ferrochrome ke andar Impha aata hai, right? That is Indian Metal Ferroalloy Limited. So it is one of the only ferrochrome companies. Jindal Stainless ki bhi ferrochrome ki khud ki mines hai. Phir lignite production ke andar, which is like a coal ka ek second form hai, jisme NLC India GMDC aata hai. सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉक्सीज टू माइनिंग. फिर प्रॉक्सीज टू कंज्यूमर में क्या आता है कि कंज्यूमर सेक्टर के भी प्रॉक्सीज हैं. इसमें कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी करके कंपनी आती है, CCL प्रोडक्ट्स, बेसिकली बल्क पैकेजिंग में कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करती है, राइट, फॉर मल्टीपल एंड यूजर्स. फिर TCPL पैकेजिंग आते हैं, तो TCPL पैकेजिंग बहुत सारी FMCG कंपनीज को बेसिकली जो पैकेजिंग है वो प्रोवाइड करता है. तो अगर हम एक बार TCPL पैकेजिंग का भी यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो जस्ट सेकेंड I'll just take you to basically screener. तो अगर हम TCPL packaging का यहाँ पे example देखते हैं, so just over here folks, just a second, right, yeah. So अगर हम TCPL packaging का example देखते हैं, so another one of the businesses last 5 years में तो अच्छा करा है, but margins have been very very sustainable, right, 15-16% में. तो type of customers अगर आप इनके देखेंगे, तो they have all the like companies like Royal Stag, Gold, तो जो भी paper और cardboard based packaging है वो ये company बनाती है. So they have multiple customers in the FMCG landscape, and just over in just a second, right? तो यहाँ पे business के अगर आप customers देखेंगे किस type के packets बनाती है, तो आप समझ जाएंगे कि FMCG के लिए these end up becoming a proxy type business, right? Because you are making these packaging material, right? तो ये भी पैकेजिंग के अंदर आता है. पैकेजिंग के अंदर और भी कंपनीज आती है, जैसे SL Propack करके एक कंपनी आती है, विच इज़ अगेन प्रॉक्सी टू कोलगेट हो गया, या फिर जितनी भी ट्यूब्स वाले बिजनेसेस हैं उनके प्रॉक्सीज हैं, राइट? तो एक SL Propack आती है. इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्यूब्स, राइट? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्यूब्स हैं, एंड इसकी गाइडेंस भी कुछ ऐसी कि दे वॉन्ट टू कीप एक्सपेंडिंग देयर मार्जिनस, सो दे आर वेंचरिंग इन टू न्यू कैटेगरीज. सो इको फ्रेंडली ट्यूब्स के अंदर भी आ रहे हैं अभी. But this is one of the businesses that is there. But for some reason, growth इतनी fast नहीं है because it is a very well penetrated category. और यहाँ पे क्या आता है, Moltec packaging करके एक और स्टॉक आता है यहाँ पे, जो पेंट्स के डब्बे बनाते हैं, राइट? पेंट्स के डब्बे बनाने वाली कंपनी है, तो इन लाइन मोल्डिंग करके एक टेक्नोलॉजी है दैट दिस कंपनी डज. एंड इनके भी मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव बीन वेरी सस्टेनेबल एट 18-20%. अगेन अ प्रॉक्सी टू पेंट्स, FMCG एंड मल्टीपल ऑफ द सेक्टर्स, राइट? एंड मार्जिनस हैव बीन सस्टेनेबल. अभी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर भी ये बिजनेस आ रहा है. सो अगेन इट्स अ प्रॉक्सी टू अंडरलाइंग ट्रेंड, राइट? एंड वी हैव टू सी व्हेन द ग्रोथ रिज्यूम्स फॉर दिस कंपनी बिकॉज दे हैव डन अ लॉट ऑफ केपेक्स. और हम अगर कंज्यूमर प्रॉक्सीज के अंदर देखते हैं और हमारे पास कौन से बिजनेसेस आते हैं, तो और अगर हम कंज्यूमर प्रॉक्सीज में देखते हैं, तो बेक्टर फूड्स आता है, राइट? जो आपके जितने भी QSR चेन्स हैं उनमें बंस बना के दे रहे हैं बेक्टर फूड्स उनको. उसके साथ साथ आपके जो भी बंस के अलावा आपके जो भी लाइक केक्स आते हैं वो भी ये बना के दे रहे हैं. देन वरुण बेवरेजेस तो प्रॉक्सी है ही पेप्सी के लिए. अभी हिंदुस्तान कोला बेवरेजेस के भी IPO की बात हो रही है. फिर Zomato इज ऑल्सो प्रॉक्सी बिकॉज अगेन QSR से आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं, यू आर यूजिंग Zomato. एंड कंज्यूमर के लिए तो प्रॉक्सी Zomato इस टाइम पे बनी गया. सो दिस इज अगेन यू आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉक्सी ट्रेंड. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रॉक्सी इज, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग की एक ट्रेंड है, उसके ट्रेंड के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर बेनिफिशरीज कौन से, दैट इज व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग. एक और भी बिजनेस आते हैं एक्सटेल इंडस्ट्रीज के नाम से, विच इज अगेन अभी उस कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, बट दैट इज़ अगेन अ कैपिटल गुड सप्लायर टू दीज FMCG कंपनीज. अभी पर कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, आई थिंक इस क्वार्टर के अंदर रिजल्ट में डीग्रोथ थी, बट इट्स अ कैपिटल गुड सप्लायर टू FMCG कंपनीज फॉर सेटिंग अप देयर फूड प्रोसेसिंग प्लांट. तो मशीनरी बना के देते हैं, राइट? दिस इज ऑल्सो अगेन अ प्रॉक्सी कि अगर इंडिया के अंदर केपेक्स बढ़ता है FMCG कंपनीज का, तो अंडरलाइंग बेनिफिशरी दीज टाइप ऑफ कंपनीज दे एंड अप बिकमिंग. सो दैट्स अ कंज्यूमर प्रॉक्सी. आगे चलते हैं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं. तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर और जो प्रॉक्सीज हैं, दीज आर कंपनीज जो इंश्योरर्स हैं, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर हम पूरा बेसिकली वैल्यू चेन देखते हैं, तो इंश्योरर्स हैं, दीज आर प्राइवेट एंड जनरल इंश्योरेंस लाइक पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस जैसे स्टार हेल्थ हो गया, लाइक रेलीगेयर हो गया, जिसके अंदर केयर हेल्थ करके बिजनेस आता है, तो वो इंश्योरर्स हैं. बट अगेन दो तो मेन हैं, तो उसके बेनिफिशरीज कौन है? इंटरमीडियरीज लाइक TPAs. तो इंडिया में इंडियाज लार्जेस्ट TPAs लिस्टेड, इंडिया का एक TPA जो लिस्टेड है, एक बार हम उसका डिस्कशन करते हैं. तो देयर इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ मेडी असिस्ट. तो अगर हम मेडी असिस्ट की बात करते हैं, इट्स अ लिस्टेड बिजनेस. सो इट्स वन ऑफ द TPAs विच इज लिस्टेड. मार्जिन इसके अभी 23-24% के, राइट, बिकॉज दे हैव डन एन एक्विजिशन. एंड देर इनके भी प्रीमियम्स 22-23% केगर पे ग्रो कर रहे हैं. ROE इनका भी 17-20% के आसपास है. एंड TPA करता गया थर्ड पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बेसिकली जो भी क्लेम्स की सर्विसेज होती है, एंड में जो भी क्लेम्स का डिसबर्समेंट होता है, दैट इज व्हाट अ TPA डज. तो TPA का एग्जैक्ट रोल अगर आप वैल्यू चेन के अंदर समझेंगे, तो TPA बेसिकली इज नथिंग बट जैसे कैम्स और वहाँ पे कारवी थे, विच इज लाइक अ सेक्रेटरी ऑफ लाइक अ सेक्रेटरी ऑफ AMCs. सिमिलरली TPA क्या करता है, जैसे मेडिसिस बीच में, तो दे मेक थ्री पीपल मीट, दैट इज नेटवर्क, दैट इज पेशेंट्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब्स, फार्मेसीज, टेली हेल्थ. मेंबर्स कौन है? ग्रुप रिटेल पॉलिसी होल्डर्स. देन पेयर्स कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड ग्रुप्स. सो बेसिकली दिस इज वॉट अ TPA डज, कि इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म विच इंश्योर्स की आपका जो डिसबर्स जो क्लेम का डिसबर्समेंट है, दैट हैपन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, दैट हैपन्स इन अ कैशलेस वे. दिस इज वॉट अ TPA डज. तो ये जो भी क्लेम के अंदर असिस्टेंस है, दैट इज वॉट अ TPA प्रोवाइड्स. एंड इट एंड्स अप बिकमिंग अ प्रॉक्सी टू हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली. फिर PB फिनटेक का एग्जाम्पल लेंगे, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉक्सीज, बिकॉज इंडिया के अंदर जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस ज़्यादा बिकने लग गई है. तो अगेन इट्स अ प्रॉक्सी. सो अगेन ये हमने मेडिसिस के DRHP से ये वैल्यू चेन निकाला है. तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं, या कोई भी DRHP पढ़ते हैं, या कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, तो आप वैल्यू चेन जरूर निकालिए, वहाँ से आपको प्रॉक्सीज मिलेंगे. प्रॉक्सीज के हैं जो एक अंडरलाइन ट्रेंड से बेनिफिट कर रहे हैं, राइट, कि अगर इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 23-25% से बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि ऑनलाइन भी इंश्योरेंस बिक्री हो रही, इट मीन्स कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए असिस्टेंस करा रहे हैं क्लेम के अंदर, वो भी अच्छा कर रहे हैं. सो इट एंड्स अप बिकमिंग अ प्रॉक्सी टू द अंडरलाइन ट्रेंड. दैट इज वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. फिर हमारे पास प्रॉक्सी टू केपेक्स आते हैं. सो दीज आर बिजनेसेस विच आर प्रॉक्सी टू द अंडरलाइंग केपेक्स दैट इज हैपनिंग इन इंडिया. आई थिंक ये पार्ट मैंने आज से 2-3 साल पहले एक वेबिनार कराया था, जहाँ पे मैंने प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग पे करा था. तब हमने बात करी थी लाइक बिजनेसेस लाइक एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रेन के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर यही है. फिर संघवी मूवर्स वहाँ पे है जो विंड क्रेन रेंटल सर्विसेज के अंदर है. फिर कमिंस इंडिया आता है जो जेनसेट्स बनाता है. कार्बोरंडम यूनिवर्सल है जो एब्रेसिव्स में है. एलिकॉन इंजीनियरिंग है जो इंडस्ट्रियल गियर्स में है. आयॉन एक्सचेंज है जो मेम्ब्रेन्स के अंदर मार्केट लीडर और वाटर केमिकल्स में मार्केट लीडर है. हर एक लाइक इंडस्ट्रियल प्लांट में आयॉन एक्सचेंज के मेम्ब्रेन है, RO मेम्ब्रेन्स लग रहे हैं, राइट. फिर अपार इंडस्ट्रीज है जो कंडक्टर्स और केबल्स के अंदर है. वीनस पाइप्स है जो स्टेनलेस स्टील पाइप्स के अंदर है. देन पिक्स ट्रांसमिशन है जो वी बेल्ट्स बनाता है, राइट, अगेन अ प्रॉक्सी. रक्तमणि ट्यूब्स है विच इज अगेन अ प्रॉक्सी, बिकॉज अगेन दे मेक स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड कार्बन ट्यूब्स. फिर KSB पंप्स है, बट अगेन वैल्यूएशन आपको इंडिपेंडेंटली देना देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ का बहुत महंगा हो गया. फिर उषा मार्टिन और भारत वायर्स आता है विच इज अ प्रॉक्सी टू केपेक्स, बट यहाँ पर ग्रोथ बड़ी स्लो डाउन हो रखी है. फिर APL अपोलो सेक्टर के अंदर APL अपोलो आता है. ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आता है प्रिसीजन ट्यूब्स के अंदर. एक पेनार इंडस्ट्रीज आता है. फिर और भी बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं स्टील ट्यूब्स के अंदर. तो पूरा स्टील ट्यूब सेक्टर बिकम्स अ प्रॉक्सी. फिर केबल्स एंड वायर्स में बहुत सारी कंपनीज आती है, पॉलीकैप, KEI, हैवल्स, ऑल दोज आर अ पार्ट ऑफ प्रॉक्सी इंडस्ट्रीज. ताराचंद लॉजिस्टिक्स भी आता है विच इज अगेन अ प्रॉक्सी टू केपेक्स, राइट, बिकॉज ताराचंद इंफ्रा कंपनी है. अगेन दैट इज अ कंपनी विच इज इन टू लीसिंग ऑफ क्रेन्स, विच इज सिमिलर टू वट संघवी मूवर्स डज, बट इट्स अ स्मॉलर स्केल बिजनेस एंड आर ऑल्सो डूइंग वेल. बट दीज आर प्रॉक्सी टू केपेक्स, की जो भी केपेक्स हो रहा है, तो यार इन गुड्स का तो रिक्वायरमेंट आने ही वाला है, राइट. सो दिस इज हाउ यू लाइक अंडर आइडेंटिफाई द प्रॉक्सीज. सिमिलरली जब हम बात करते हैं रिसाइकिलिंग के ट्रेंड की, तो रिसाइकिलिंग के ट्रेंड की भी कुछ प्रॉक्सीज होंगे. तो प्लास्टिक के अंदर देखेंगे तो गणेश इकोस्फीयर होएगा. लेड एसिड रिसाइकिलिंग बैटरीज में देखेंगे तो ग्रेविटा होएगा. अभी ग्रेविटा में एक ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन था, वो आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहिए. फिर जब हम म्यूनिसिपल वेस्ट लाइक जो कलेक्शन और डिस्पोजल है उसकी रिसाइकिलिंग की बात करेंगे तो एंथनी वेस्ट होएगा. ऑटो स्क्रैप की बात करेंगे तो MSTC आता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करेंगे तो इको रिको आता है उसके अंदर, बट अगेन बहुत छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन आपको देखनी पड़ेंगी। फिर वाटर सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटेक वाबाग आता है, आयन एक्सचेंज भी आता है, कार्बन ब्लैक की रिसाइकलिंग में बात करेंगे तो हाई ग्रीन कार्बन आता है जहाँ पे 2 to 3 times केपेक्स जा रहा है अभी लाइक। फिर अगर हम लेड एसिड रिसाइकलिंग की बात करेंगे तो बॉन्डी ऑक्साइड्स भी आता है। सो अगेन रिसाइकलिंग के लिए भी बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं उस ट्रेंड को प्ले करने के लिए, राइट। दैट इज वॉट यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, प्रॉक्सी ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है कि यार हम एक सेक्टर ढूंढ रहे हैं, सेक्टर के अंदर उसके प्रॉक्सी ढूंढ रहे हैं, फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस उसके अंदर चालू करेंगे। सिमिलरली वाटर के अंदर अभी हमने एक वाटर वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं। वाटर ट्रीटमेंट में आयन एक्सचेंज है, EMS लिमिटेड है, EPC के अंदर त्रिवेणी इंजीनियरिंग आता है, लाइक वाटेक वाबाग आता है, DI पाइप जो पानी को यहाँ से वहाँ ट्रैवल कराने के लिए, बड़ा सिक्लिकल बिजनेस है। जल जीवन मिशन अभी अच्छा कर रहा है तो ये बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। इफ जल जीवन मिशन डजंट डू वेल, या तो पूरा 100% पेनिट्रेशन हो गया तो इनके हो सकते हैं डिमांड भी नीचे चले जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जिंदल सॉ, वेल्समन कॉर्प, श्याम मेटालिक्स टाइप बिजनेसेस आ रहे हैं DI पाइप में। वाटर पंप्स और कैप वुड्स के अंदर WPIL, थर्मैक्स, किलोस्कर ब्रदर टाइप बिजनेसेस आते हैं। EPC प्लेयर्स में जो वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं, राइट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वेल्समन इंटरप्राइजेस, NCC, ओम इंफ्रा, EMS लिमिटेड, ITD सीमेंटेशन, लार्सन एंड टूब्रो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन वाटर, जहाँ से उनका बहुत इस टाइम पे बहुत बड़ा जिनका ऑर्डर बुक आ रहा है। बट अगेन दिस इज अ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉक्सीज आर अवेलेबल विच आर डूइंग समथिंग और दी अदर इंटरेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू चेन। सिमिलरली केपेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सांगवी मूवर्स, ताराचंद, क्राउन लिफ्टर्स, दीज आर द 3 बिजनेसेस विच कम, राइट। बट अगेन ये रेंटल सर्विसेज में, तो जब तक रेंट्स बढ़ रहे हैं तब तक ये बिजनेसेस अच्छा करते हैं, जब उल्टा आते हैं तो ये बिजनेसेस बहुत खराब भी करते हैं। सो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम संदीप, जो ट्विटर पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डालते हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए, राइट। टेलीकॉम केपेक्स के कौन बेनिफिशरीज हैं, राइट, अगर टेलीकॉम में केपेक्स होता है, 5G का केपेक्स होता है, तो हाई एस एन लाइन के अंदर सुयोग टेलीमेटिक्स है, जो रेडियो इक्विपमेंट है या जो और इक्विपमेंट है टेलीकॉम का, तेजस नेटवर्क बनाता है। जो पूरा टावर कौन बनाता है, इंडस टावर बनाता है। बैटरीज कौन बनाता है, उसके लिए एक्साइड बनाता है और एमरॉन बनाता है। यहाँ तक HBL पावर भी यहाँ पे आते हैं। HBL पावर तो आपका रेलवे के लिए भी काम करता है, डेटा सेंटर के लिए भी बैटरीज बना रहा है और टेलीकॉम के लिए भी बना रहा है। सो गेन इट्स अ प्रॉक्सी। आप लोगों का पर्पज है कि आप मेरे को ढूंढ के डेटा सेंटर के भी प्रॉक्सी बताइए, बहुत सारे प्रॉक्सीज निकलेंगे। ऑयल एंड गैस में देखेंगे तो और प्रॉक्सी निकल के आएंगे। ऑयल एंड गैस में क्या आएगा, सिलेंडर एंड कैस्केड्स में EKC, टाइम टेक्नोब्लास्ट, राइट। हीट एक्सचेंजर्स में अनूप इंजीनियरिंग आएगा, देन कंप्रेसर्स में किलोस्का न्यूमैटिक, टर्मिनल्स में AGs और गणेश वेंजोप्लास्ट आएगा। फिर पोर्ट्स भी एक प्रॉक्सी है, बिकॉज इंडिया का अगर ट्रेड बढ़ता है तो पोर्ट्स में भी अच्छा करेगा, तो पोर्ट्स में अडानी पोर्ट्स आता है, अडानी पोर्ट्स के साथ साथ फिर एक गुजरात पीपा पोर्ट करके एक कंपनी आती है। तो पोर्ट्स अगर आप बिजनेस की इकोनॉमिक समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको कि पोर्ट्स जो बिजनेस है, अगेन यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल खोता हूँ गुजरात पीपा पोर्ट का, जस्ट ओवर हियर स्क्रीनर पे खोलते हैं हम एग्जाम्पल में, एंड जस्ट ओवर हियर अगर हम देखते हैं तो अगेन इट इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस वेयर मार्जिन्स आर वेरी वेरी हाई। तो मार्जिन 50-60% है, बिकॉज टिपिकली, और जस्ट थिंक अबाउट इट, वॉट इज अ पोर्ट बिजनेस, इट्स अ टोल रोड बिजनेस, राइट। सो अगेन इट्स अ प्रॉक्सी टू कंट्रीज ट्रेड, कि यार ट्रेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बढ़ रहा है तो पोर्ट्स की तो टनेज ग्रोथ आनी है। अडानी पोर्ट्स भी यहाँ पे एक बिजनेस है, हम अडानी ग्रुप की ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते चैनल पे, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस अवेलेबल ओवर देयर, जो मार्केट लीडर है पोर्ट्स के अंदर। JSW इंफ्रा भी आते हैं उसके अंदर, राइट। सो दोज आर मार्केट लीडर्स इन पोर्ट्स। डेटा सेंटर के अंदर जेनसेट्स वाले हैं, कमिंस, किर्लोस्कर। सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे स्टील और सीमेंट यूज होता है। फिर ट्रांसफॉर्मर के अंदर स्नाइडर इलेक्ट्रिक, भारत बिजली एक्सेट्रा आते हैं। कूलिंग सिस्टम में ब्लू स्टार का अगर आप देखेंगे तो ब्लू स्टार के AC बहुत यूज हो रहे हैं कूलिंग सिस्टम में, राइट। तो ब्लू स्टार हैज बीन डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स ऑल्सो, एंड वैसे ही इंडिया के अंदर गर्मी बहुत बढ़ रही है। स्विच गियर्स के अंदर सीमेंस, GE, ABB, श्नाइडर आते हैं। और डेटा सेंटर्स के अंदर टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आता है, जो डेटा सेंटर EPC है एक, राइट। इसके साथ साथ एक और कंपनी आती है, दैट इज अगेन टार के साथ, क्या नाम था उसका, दैट इज अनंत राज ग्रुप, राइट। तो अनंत राज यहाँ पे कंपनी आती है, विच बेसिकली यहाँ पे अभी 1 MW का मानेसर के अंदर ये इस टाइम पे एक डेटा सेंटर इस टाइम पे इन्होंने रेंट पे भी दिया हुआ है, तो और भी डेटा सेंटर इस टाइम पे बना रहे हैं, राइट। तो अगेन तो करंटली आई थिंक अभी 3 MW का ऑपरेशन है मानेसर में, दे एक्सपेक्ट दिस टू गो टू 50 MW इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये तो डायरेक्टली डेटा सेंटर के ओनर ही है, राइट। सो इट्स अ रेंटल बिजनेस सॉर्ट ऑफ थिंग वेज विच दे आर डूइंग, एंड वैसे रियल एस्टेट बिजनेस है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉक्सीज देयर। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी है जो आपको पढ़ना चाहिए इंडिपेंडेंटली, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स. तो ये क्या कर रहा है इस टाइम पे, जो शिप बिल्डिंग हो रही है इंडिया में, जो वॉरशिप्स बन रही हैं, छोटी वाली शिप्स बन रही हैं, उसमें क्या हो रहा है, दिस कंपनी हैज नियरली 24-25,000 करोड़ ऑर्डर बुक विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, एंड दे आर बिडिंग फॉर ऑर्डर्स विच हैव अ पोटेंशियल ऑफ 60-70,000 करोड़ ऑफ मोर ऑर्डर बुक, राइट. तो अभी 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो इट मीन्स कि स्केल अप टॉप लाइन का 7-9,000 करोड़ तक हो सकता है, राइट. एंड यहाँ पे अभी इनकी कॉन कॉल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन कॉल्स विच आई रेड दिस अर्निंग सीजन. आई थिंक इनकी अगर आप ये एनालिस्ट मीट हुई थी, अगर आप एनालिस्ट मीट को पढ़ते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन कॉल थी इनकी, एंड कॉन कॉल से बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज मेरे को ये आज तक इंडस्ट्री नहीं पता थी शिप बिल्डिंग की, एंड दिस इज़ अ न्यू इंडस्ट्री विच आई एनकाउंटर्ड, राइट. तो ये नई इंडस्ट्री थी, तो कैसे कैसे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच दे माइट बी बिडिंग फॉर, एक एक प्रोजेक्ट 20-30,000 करोड़ का है. तो आपको एक बार ये पूरी कॉन कॉल नहीं, इनकी एनालिस्ट मीट है, जो अगर आप देखेंगे 36,000 करोड़ का एक एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, राइट. तो टोटल में 70,000 ऑड करोड़ के प्रोजेक्ट कंपनी शायद सबमिट करेगी उनके लिए. तो इनका एनालिस्ट डे था, दिस इज़ वॉट यू कैन रीड. तो शिप बिल्डिंग के अंदर एक कंपनी है, and it is currently a mini ratna company, they want to become a navratna company. Navratna company aap kab bante, jab aapka 10,000 crore ki top line hoti hai. To unhone guidance 20-30 tak ki di hai, but again they have a very solid order book to execute that, so you must read it independently. To ye bhi ek proxy to shipbuilding ka trend hai, right. So this is again a proxy type of business. Finally, फिर हम last couple of proxies देखते हैं. तो मैंने आपके लिए एक Excel sheet भी बनाई है, जहाँ पे हमने proxies और उनके trends का नाम लिखा है, तो आप उसको access कर सकते हैं, description के अंदर है. फिर Indian steel pipe industry को देखते हैं, तो यहाँ पे ERW pipes जो carbon steel से बनते हैं, यहाँ पे APL, Apollo, Surya, Goodluck, ये सारी companies हैं carbon steel से. फिर saw pipes बनते हैं, इसमें LSAW और HSAW आता है, ये basically आपके oil and gas के लिए, और water लाइक जो water transportation है उनके लिए. यहाँ पे मैन इंडस्ट्रीज, जिंदल सॉ, वेल्समैन कॉर्प आता है, राइट. डक्टाइल आयरन पाइप्स की बात करते हैं, जो कार्बन स्टील से बनते हैं और आयरन ओर से बनते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, वेल्समैन कॉर्प और जिंदल सॉ जैसी कंपनीज आती है. स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस बनाते हैं, जिसके थ्रू सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स बनते हैं, जहाँ पे वीनस और रत्नामणि जैसे बिजनेसेस आते हैं. आपका ये जो जिंदल सॉ है, वो सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स भी बनाते हैं स्टेनलेस स्टील में, और सीमलेस कार्बन पाइप्स के अंदर महाराष्ट्र सीमलेस आते हैं, जो ऑयल एंड गैस में यूज होते हैं. You can look at this value chain and you can just appreciate कि यार कैसे value chain को map करके you can keep identifying proxies. क्योंकि proxy कोई oil and gas में use हो रहा है, कोई construction में use हो रहा है, कोई basically water transportation में use हो रहा है, right? So that is the end purpose of these proxies. Similarly, just before I go towards the end of the video, just before I go forward, next video जो हम करेंगे, that we will be doing on a sector which is currently horribly depressed. कौन सा sector है? That is the financial services. तो हम पूरे banks के sector का discussion करेंगे, क्योंकि banks ने first time PAT contribution of financial services in Nifty exceeds the weight of financial services in Nifty. तो almost 7,56,000 crore का profit है Nifty 50 का, जिसमें से more than 30% of the profit financial services से आ रहा है, right? एंड बैड कॉन्ट्रीब्यूशन 33.2% हो गया, और वेटेज कॉन्ट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 33% है. तो पूरा का पूरा सेक्टर मैं आपके साथ नेक्स्ट संडे यूट्यूब पे एनालाइज करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट हेटेड सेक्टर टुडे. तो ये मैंने आपको एक हिंट दिया, दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स दैट वी विल बी एनालाइजिंग. इफ यू एक्साइटेड फॉर दिस, डू ड्रॉप अ हेल यस इन द कमेंट्स. एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप जब भी प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं या प्रॉक्सी ढूंढते हैं, तो आपको प्रॉक्सीज कैसे ढूंढनी चाहिए, आपको DRHPs पढ़ने चाहिए, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, आपको कॉन कॉल्स पढ़नी चाहिए, एंड आप जब कंपनी के जब IPO के बाद जो DRHP आता है, तो उसने वैल्यू चेंज दी होती है, तो आपको वहाँ से पूरी इंडस्ट्री या सेक्टर का आइडिया लग जाएगा. तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन फिगर आउट, फिल्टर आउट प्रॉक्सीज. दैट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू फिल्टर आउट प्रॉक्सीज. जस्ट बिफोर द एंड, सो जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हम हमारी SOIC हैज़ टर्न 4, तो दिस इज़ आर 4th एनिवर्सरी, एंड 4th एनिवर्सरी पे we are inviting you to the SOIC membership. Firstly, thank you so much for being a part of the SOIC YouTube community. तो हम लोग SOIC course के अंदर क्या सिखाते हैं, तो SOIC course के अंदर हम आपको basic financial planning से start कराते हैं. तो अभी हम यहाँ पे एक mastering mutual fund series में एक webinar करा रहे हैं next Sunday, that is also part of the SOIC membership. तो basic financial planning से start करते हैं, फिर how to find fundamentally strong stocks सिखाते हैं, फिर एक इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे ढूंढे स्टॉक की वो भी सिखाते हैं, फिर एग्जिट सिस्टम कैसे बनाएं, बिकॉज बड़े सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आके अभिमन्यु बन जाते हैं, उनको एग्जिट नहीं आता, वो हम सिखाते हैं। वी ऑल्सो टीच हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर लाइक स्टॉक्स योर सेल्फ, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कैसे ढूंढे, बेस फॉर्मेशन को कैसे ढूंढे, डैट वी ऑल्सो टीच, एंड हाउ टू बिकम अ सेक्टोरल मास्टर इज समथिंग डैट वी ऑल्सो टीच। सो SOIC मेंबरशिप कवर्स ए टू जेड ऑफ फाइनेंस बिकॉज आर पर्पज इज टू मेक यू अ कंप्लीट इन्वेस्टर। एंड SOIC मेंबरशिप का आई एम जस्ट शेयरिंग द पेज विद यू, तो यू कैन यूज द कूपन कोड SOIC4 फॉर अ 15% ऑफ ऑन द SOIC मेंबरशिप, एंड इट इज ओनली लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो SOIC4 करके आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, एंड पूरी SOIC मेंबरशिप में देर आर टन्स ऑफ कोर्सेज टू गो थ्रू, एंड हमने क्रैश कोर्स भी आपके लिए बनाया है। एंड क्रैश कोर्स में क्या होता है कि पूरे जो SOIC की Level 2 से लेकर Level 6 तक की लर्निंग्स हैं वो हमने SOIC क्रैश कोर्स के अंदर भी कवर करी है। इफ़ समवन डजेंट वांट टू स्पेंड 50-60 आवर्स, 18 आवर्स के अंदर पूरा क्रैश कोर्स भी कराएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द SOIC कम्युनिटी, बिकॉज SOIC हैज फाइनली टर्न 4। यू कैन यूज अ कूपन कोड SOIC4। विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो।
सो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो आई कैन से कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करा, हमने प्रॉक्सीज का एनालिसिस करा, एंड हमने देखा एक इंडस्ट्री की वैल्यू चेन कैसे चलती है, एंड हमने क्लोज टू 20-25 इंडस्ट्रीज का साथ साथ एनालिसिस करा इसके अंदर। अगर आपको इस वीडियो की प्रेजेंटेशन चाहिए देन लिंक टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ यू लव द वीडियो जस्ट ड्रॉप अ लव्ड इट इन द कमेंट्स एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन। विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड कौन सी वीडियो हमें नेक्स्ट टॉपिक पे करनी चाहिए उसके भी आप मेरे को सजेशंस कमेंट में देना। जय हिंद।